प्राइवेट लिमिटेड सिटी। इस देश में एक ऐसा शहर भी है जहां की म्यूनिसिपैलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाती है। यहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं होते। शहर की ज्यादातर जमीन किसी की मिल्कियत है। एक इंसान इस शहर को जनता की तरफ से चुने हुए नगर निगम का अधिकार दिलाने के लिए 32 साल से संघर्ष कर रहा है। रवि प्रकाश की रिपोर्ट। वह साल 1988 के शुरुआती महीने थे। जमशेदपुर के सोनारी इलाके में रहने वाले युवा जवाहरलाल शर्मा ने तत्कालीन बिहार सरकार और टाटा मैनेजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने पूछा कि जब पूरे देश में त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली है तो जमशेदपुर में क्यों नहीं, यहां नगर निगम का चुनाव क्यों नहीं हो सकता, इसे किसी कंपनी के रहमोक्रम पर छोड़ देना कितना सही है, क्या यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। जवाहरलाल शर्मा अब 75 साल के हैं और 32 साल से उनकी कानूनी लड़ाई जारी है। बिहार से अलग होने के बाद जमशेदपुर शहर अब झारखंड का हिस्सा हो चुका है, लिहाजा जवाहरलाल शर्मा की लड़ाई अब बिहार सरकार के बजाय झारखंड सरकार से है। जमशेदपुर में आज भी त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली के तहत वोटिंग नहीं होती, वहां नगर निगम नहीं बन सका है, लोग सिर्फ अपने विधायक और सांसद का चुनाव करते हैं। शहर की साफ सफाई, बिजली पानी और दूसरी चीजों का जिम्मा टाटा स्टील के पास ही है। इसकी सहायक कंपनी जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विस कंपनी लिमिटेड यह काम करती है। जमशेदपुर देश का इकलौता ऐसा शहर है जहां नगर निगम का काम किसी प्राइवेट कंपनी के जिम्मे है। यह उस मायने में भी अनूठा शहर है जहां की ज्यादातर जमीन लीज पर है, किसी कंपनी की व्यक्तिगत संपत्ति है। क्या है पूरा मामला? जिस जमीन पर अभी देश का प्रमुख औद्योगिक शहर जमशेदपुर बसा है, वह इलाका कभी साक्ची नाम का गांव हुआ करता था जो आदिवासी बहुल था। यहां की जमीन उनकी थी, जंगल उनके थे, स्वर्णरेखा और खरकई जैसी नदियां थीं। साल 1904 में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने इस इलाके में लौह अयस्क होने का पता लगाया। दोराबजी टाटा तब स्टील प्लांट लगाने के लिए जगह तलाश रहे थे। उन्होंने साक्ची, जो अब जमशेदपुर हो चुका है, का दौरा किया, जगह देखी। तीन साल बाद साल 1907 में उनके पिता जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाई। साल 1912 से यहां उत्पादन शुरू हो गया। तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत ने 1929 में यहां की 15,449 एकड़ जमीन टिस्को को लीज पर दे दी और कहा कि कंपनी यहां की व्यवस्था भी संभाले। 1984 में तत्कालीन बिहार सरकार ने भी इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। 16 साल बाद बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड नाम का अलग राज्य बना, इसकी अपनी सरकार बनी, लेकिन जमशेदपुर में वही व्यवस्था लागू रही। मतलब करीब करीब पूरा जमशेदपुर शहर टाटा स्टील के लीज एरिया का हिस्सा बना हुआ है। टाटा स्टील से जुड़े लोगों का तर्क है कि जुस्को के अधीन आने वाले जमशेदपुर शहर की आबादी करीब 7 लाख है। इनमें से करीब 2 लाख लोग या तो टाटा स्टील के कर्मचारी हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद इसी इलाके में बस गए हैं। ऐसे में अगर यहां नागरिक सुविधाओं की बहाली का जिम्मा टाटा स्टील की सहायक कंपनी जुस्को के पास है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। क्यों है कानूनी लड़ाई? लेकिन जवाहरलाल शर्मा इससे सहमत नहीं है। वह कहते हैं कि हमें यह तय करना होगा कि हम प्रजातांत्रिक भारत का हिस्सा हैं या फिर किसी जमींदारी व्यवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि भारत के संविधान के आर्टिकल 243Q के तहत यहां भी नगर पालिका या नगर निगम का गठन हो। भले ही यह काम एक एजेंसी के बतौर जुस्को को ही मिल जाए, लेकिन उसे आदेश देने का काम हर हाल में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं संवैधानिक व्यवस्था को कायम करने की लड़ाई लड़ रहा हूं। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में कहा है कि वह वहां एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप और नगर निगम बनाना चाहती है, वह इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि शहर को 2 हिस्सों में बांटना ठीक नहीं है। शर्मा कहते हैं कि अगर यहां नगर निगम बन गया तो सरकार भी फंड देगी। जमशेदपुर के लोग कब तक किसी की व्यक्तिगत जमींदारी व्यवस्था के तहत रहेंगे? शर्मा ने बताया कि कानूनी लड़ाई से पहले उन्होंने JRD टाटा को भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने टाटा को लिखा कि जमशेदपुर के लोगों को थर्ड वोटिंग राइट यानी तीसरे वोट का अधिकार नहीं है। संविधान कहता है कि किसी शहर की व्यवस्था जनता के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे, नोटिफाइड एरिया कमेटी की वैधता नहीं हो सकती। आप किसी कर्मचारी के मालिक हो सकते हैं, उसके पूरे परिवार के नहीं। ऐसे में उन्हें यह पहल करनी चाहिए। JRD टाटा ने उनके पत्र का जवाब भी दिया था, लेकिन कोई सार्थक पहल नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। शर्मा की तरफ से प्रशांत भूषण सरीखे वकीलों ने अपनी बात रखी तो टाटा स्टील की पैरोकारी अभिषेक मनु सिंह जैसे जाने माने वकील ने की। कौन है जवाहरलाल शर्मा? जवाहरलाल शर्मा के पूर्वज उत्तर प्रदेश से जमशेदपुर आए थे। उनके पिता टिस्को, जो अब टाटा स्टील कंपनी बन चुकी है, उसमें काम करते थे। शर्मा ने भी कुछ दिन तक टाटा स्टील की नौकरी की। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोली और घाटा लगने पर उसे बंद भी कर दिया। उनकी कंपनी भी टाटा स्टील के लिए काम करती थी। इसके बावजूद उन्होंने टाटा प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बकौल शर्मा, पिताजी ने बड़ा घर बनवा दिया था, किराए के पैसे ठीक ठाक आते थे, लिहाजा घर चलाने का संकट कभी नहीं रहा। पत्नी भी नौकरी करती थी, अब दोनों बेटियां भी नौकरी में हैं, इसलिए मैं घर की जवाबदेही से मुक्त हूँ। कुछ दोस्तों ने भी समय समय पर मदद की और सुप्रीम कोर्ट जाते जाते मेरी झिझक भी टूट गई, कोर्ट का डर खत्म हो गया। इस कारण न केवल नगर निगम के गठन बल्कि कई और मुद्दों पर मैंने जनहित याचिकाएं दायर की और लीगल एक्टिविज्म करता रहा। जवाहरलाल शर्मा की इस कानूनी लड़ाई में सबसे अधिक साथ देने वाली उनकी पत्नी आनंद बाला शर्मा एक स्कूल में शिक्षिका थीं। 11 साल पहले वह रिटायर हो गई। कभी इंदौर से आकर जमशेदपुर में बसने वाली आनंद बाला शर्मा को गर्व है कि उनके पति इस उम्र में भी समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया, कुंवारेपन में ही एक फिल्म देखी थी सत्यकाम, उसका हीरो लगातार संघर्ष करता रहता था। मुझे उस कहानी ने काफ़ी प्रेरित किया। जब मेरी शादी हुई और मैंने देखा कि मेरे पति को समाज की फिक्र है, तो शुरुआती झिझक के बाद मैं उनके साथ हो गई। वे लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे और मैं आज भी उनके साथ खड़ी हूँ। कब होगा इस लड़ाई का अंत? जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार मनोरंजन सिंह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस लड़ाई का अंत एक दिन में संभव है। दरअसल कोर्ट हर बार कोई न कोई निर्देश देता है, सरकार को नोटिस आता है, सरकार उसका जवाब फाइल करती है, टाटा स्टील भी अपना एफिडेविट देती है, फिर शर्मा काउंटर एफिडेविट डालते हैं। इस तरह यह लड़ाई पिछले 32 वर्षों से चली आ रही है। उससे पहले भी साल 1967 में तत्कालीन बिहार सरकार ने जमशेदपुर में नगर निगम बनाने की कोशिश की थी, लेकिन तब टिस्को ने उसका विरोध किया। फिर 1973 में यह कोशिश दोबारा की गई, इसके बावजूद इस मामले का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। मंत्री भी उठा चुके हैं मुद्दा। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री सरयू राय भी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। झारखंड की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को कई बार घेरा। राय कहते हैं कि बिहार सरकार ने 1972 में जमींदारी व्यवस्था खत्म की, तब टाटा स्टील सुप्रीम कोर्ट चली गई। बाद में कंपनी ने यह कहते हुए केस वापस ले लिया कि उसका बिहार सरकार से समझौता हो गया है। बकौल सरयू राय, साल 2016 में भी टाटा स्टील जवाहरलाल शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई तो यही हलफनामा दिया कि उसका झारखंड सरकार से समझौता हो गया है। शर्मा ने RTI के जरिए इस समझौते की जानकारी मांगी, तब सरकार ने बताया कि उसका टाटा स्टील से कोई समझौता नहीं हुआ है। सरयू राय आरोप लगाते हैं कि इस मामले में टाटा स्टील ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। बहरहाल जमशेदपुर पर यह जंग जारी है, लोग बेसब्री से इसके नतीजे का इंतजार कर रहे हैं।